देवियों सज्जनों, जैसे अभी आप स्मृति जी कह रही थी, जीवन में कुछ रिश्ते एक दिन के लिए नहीं होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं। और उस रिश्ते को निभाना रोज की जरूरत होती है, सिर्फ 24 घंटे नहीं, एवरी मोमेंट, एवरी आवर, एवरी मोमेंट निभानी होती है। जब रिश्ते में बिखराहट आता है, रिश्ते में प्यार कम होने लगता है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आने लगता है, तो फिर मार्केट सेलिब्रेट करता है उसे। सेलिब्रेशन से रिश्ते तो सुधरते कम है, मार्केट जरूर सुधरता है। मार्केट में सामान बिकते हैं, कार्ड्स बिकते हैं, गिफ्ट्स बिकते हैं। बिगड़े हुए बच्चे मां को गिफ्ट दे करके खुश करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे साल भर नहीं पूछते थे, मदर्स डे के दिन गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करते हैं। पर यह सच्चाई है, समाज में ये समस्या है। जहां जहां रिश्तों में कमी आने लगती है, हमारे समाज के चलाने वाले लोगों को लगता है कि हम उसे रिवाइव करने के लिए हमें आज डे सेलिब्रेट करने की जरूरत है। हम अर्थ डे भी सेलिब्रेट करते, धरती के साथ हमारी रिश्ता तो जब से हम मां के गर्भ से पैदा हुए तब से है। पर क्यों सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने धरती के साथ इतना अन्याय किया कि एक अवेयरनेस बनाने की जरूरत पड़ी कि धरती तुम्हारी है, उसका ख्याल रखो तुम्हारे लिए। हम कभी सन और डॉटर डे नहीं मनाते हैं, पर हो सकता है 10, 20, 50 साल के बाद मनाने की जरूरत पड़े, जब मां बाप इतने ज्यादा रूड हो जाए, क्रूएल हो जाए, 100% प्रोफेशनल हो जाए, जैसे कि होते जा रहे हैं। तो हो सकता है सरकार को, समाज को ये बताना पड़े कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये बड़े फायदे की चीज है, इनको भी जरा सेलिब्रेट करो, इनके भी जरा ख्याल रख लिया करो। हम आज भी देखते हैं कितने मां बाप बच्चों के साथ अन्याय करते हैं अपनी प्रोफेशनल सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। पर अभी भी अधिकांश लोग बच्चों के साथ ठीक रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ी है। तो रिश्तों को एक खास दिन पर सेलिब्रेट करने की तब जरूरत पड़ जाती है जब सचमुच समाज में ज्यादातर लोगों के अंदर उस रिश्ते के प्रति सम्मान घट जाता है, उस रिश्ते को मानने के लिए भावनाएं कम हो जाती है, तो मजबूरन समाज को कुछ ना कुछ उठाना पड़ता है। बेसिकली ये डे कल्चर वेस्ट में शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि हम कोई दूध के दुले हुए हैं, हम अपनी तारीफ कर जाएं। शुरू हुआ क्योंकि मां बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, अलग रहते हैं, कभी कभी हम सालों भूल जाते हैं, चलो मदर्स डे फादर्स के डे के दिन याद तो आ जाए कम से कम, नहीं तो 2-4 साल बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि मां बाप धरती पर जिंदा है। जब मैं कहता हूं ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, खुश मत होइए कि भारत में सब अच्छा अच्छा है इंडियन कल्चर में, कम से कम ओल्ड एज होम में तो शांति में रहते हैं। भारत में तो जिस तरह के बच्चे आजकल नहीं, कितने सालों से हम देख रहे हैं, बड़े होने के बाद शादी करने के बाद जिस तरह मां बाप के साथ व्यवहार करते हैं, तो जस्टिफिकेशन मिलता है कि मदर्स डे भी मनाया जाए, क्योंकि वो कल्चर अब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। जो नेचुरल रिलेशनशिप है, जिसके लिए कोई आर्टिफिशियल सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि आदमी जरूरत से ज्यादा स्वार्थी, सेल्फिश होता जा रहा है। आदमी जरूरत से ज्यादा अपने और अपने परिवार से ज्यादा पैसा और पैसे से बनाने वाले चीजों के प्रति आकर्षित होता जा रहा है, तो मनाने की जरूरत पड़ती है। तब उनको ये बताने की जरूरत पड़ती है कि तुम्हारे मां बाप के जीवन, तुम्हारे जीवन में मां बाप की क्या भूमिका रही है। तुम्हें जब से पेट में रखा तब से लेकर कितना कष्ट उसको उठानी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पता नहीं हो सकता है, अगर कोई समझना चाहे तो बचपन से लेकर समझ सकता है, पर जब हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं तो फिर बताने की जरूरत पड़ती है। मां नहीं बता सकती, जिसने आप पर एहसान किया वो तो आपको नहीं बताएगा, और जो निश्चल भाव से आपको उपकार करता है वो तो कभी भी नहीं बताएगा। वो आपके माँ बाप हो, आपके मित्र हो, आपके कोई भी हो, जिसका आप पर एहसान है और वो अच्छा व्यक्ति है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मेरा आप पर क्या एहसान है। पर समाज बताता है, सरकारें बताने की कोशिश करते हैं, हम जैसे लोग बताने की कोशिश करते हैं। जब हमारे मन में हर चीजों के प्रति सिर्फ प्रोफेशनल नजरिया रहती है और कोई नजरिया नहीं रहती है। मनुस्मृति का श्लोक कहता है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतीरपि। माँ बाप बच्चों के पैदा होने से लेकर उनको बड़े होने तक, ऐसा नहीं है कि बच्चे जब कमाने लग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, वो खुद माँ बाप बन जाते हैं तो माँ बाप शांति में बैठे रहते हैं। हम तो देखते हैं रिटायर्ड हो गया, बच्चे भी सेटल हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो भी 24 घंटे टेंशन लेकर बैठे रहते हैं, मेरे बेटे की बेटी हुए, बेटा हुआ, बेटी का बेटा हुआ, वो कैसे गुजारा करेगी, ऑफिस कैसे जाएगा, काम कैसे करेगा, नहीं मुझे उसके पास रहना है। वो अपना एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, उनको क्या फर्क पड़ा है। बच्चे पैदा किया, आराम से खूब मेहनत करके पाला पोषा, नहीं अभी उनके बच्चे कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी खुद जी रहे, तब भी हम उनके पास जाते हैं। इन माँ बापाओं के बात देखिए, उनको कोई कष्ट ना हो, 50 साल का बेटा है, 50 साल की बेटी है, 70-80 साल के बुजुर्ग माँ बाप हैं। शास्त्र तो कहता है जब आपके माँ बाप आप बच्चे वाले हो जाओ तो अपने माँ बाप से बच्चों जैसा बिहेव करो। बच्चों जैसा मतलब कि जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बच्चों की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हो, जैसे अपने बच्चों की दुख नहीं देख सकते हो, उनके साथ बातें करते हो, उनके साथ घूमते हो, उनके साथ हर चीज, उनके हर सुख को पूरा करने के लिए कोशिश करते हो, अपने माँ बाप के साथ भी वैसे ही व्यवहार करो जैसे अपने बच्चों के साथ करते हो। पर उल्टा देखते हैं, माँ बाप 50-60 साल के बच्चों के भी उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे अपने बच्चों को करते हैं। हम कितने बुढ़े हो जाएं, माँ बाप हमें हमेशा उतना ही प्यार से, उतने ही समर्पण भाव से, वैसे ही अपने आप को कुर्बान करते हुए सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और क्योंकि हम एक नए समाज में जी रहे हैं, एक नए तरह की सोसाइटी, एक नए तरह के वातावरण है, बहुत सारे माँ बाप बच्चे जब कहता हूं कि बच्चे मत समझिए, हम सब बुजुर्ग लोग भी बच्चे हैं, अगर हमारे माँ बाप हैं उनके लिए मिसयूज करते हैं माँ बाप के उस निश्चल प्यार को, जिस प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपने आप को सेक्रीफाइस करने की में खुशी महसूस करते हैं, उसका मिस यूज करते हैं, उसको एक्सप्लोइट करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो भारत से बाहर रहते हैं एनआरआई के रूप में, हम देखते हैं, सुनते हैं, हजारों में, लाखों में भारत से सिर्फ इसीलिए मां बाप को यहां बुला देते हैं क्योंकि फ्री में नौकर नौकरानी मिल जाए, खाना बनाने वाले मिल जाए, काम करने वाले मिल जाए, बच्चों को पालने वाले मिल जाए, और पति पत्नी अय्याशी करें, कमाएं और अय्याशी करें, बच्चों की जिम्मेदारी ना लें, घर की जिम्मेदारी ना लें, मां बाप को रखते हैं। मदर्स डे के दिन जरूर गुलाब का फूल या कोई फूल दे देते होंगे, कोई गिफ्ट दे देते होंगे, इंडिया से बढ़िया सा साड़ी मंगा के दे देते होंगे और खुश हो रहे होंगे, हम मां बाप के कितने अच्छे संतान हैं। चले, कुछ न करने से, साल भर न करने से 360 दिन मजदूरों की तरह मेहनत कराने वाला एक दिन तो याद आता है कम से कम। इसीलिए बुरा मैं नहीं कह सकता कि मदर्स डे मत नहीं करो, उन लोगों के लिए तो जरूरी है, एक दिन तो याद आए। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, हमारे आस पड़ोस में हजारों में मिल जाते हैं इस तरह के जानवर, इस लाखों में मिल जाते हैं इस तरह के पशु। इसीलिए कभी कभी समय का, टाइम का डिमांड होता है ये जो डे सेलिब्रेशन करने का, ये हमारे कल्चर के पार्ट नहीं हो सकते थे पर होना पड़ता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी, संस्कृति भी अब वैसे नहीं रही जैसा हम बोलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको या मुझे, आपके मां का क्या आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन है वो बताए तभी हमें समझ में आएगा। तो हमसे ज्यादा कौन ज्यादा जानता है कि हमारे जीवन में मां का क्या कंट्रीब्यूशन है। जब भी विपत्ति आती है, संकट आता है, कोई भी भाग जाए, मां तब तक नहीं चलती है जब तक अपने बच्चे को पहले सुरक्षित न कर दे। हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे, सुनामी से लेकर, भूकंप से लेकर, नेचुरल कैलमिटीज आती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, खुद मर जाती हैं माएं, सारे कष्ट उठा लेती हैं सिर्फ इसीलिए कि बच्चे को जिंदा रख सकें, बच्चे को सुखी रख सकें। हमने घटना सुनी थी, एक मां कहानी थी, उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चे की लड़की थी, उसका एक ही लड़की थी, लड़की का बाप नहीं था, अकेली मां थी और काणी थी, उसके मुंह जल गया था, इसलिए सूरत अच्छी नहीं थी, बदसूरत हो चुकी थी जलने के कारण। बेटी हमेशा कहती थी तुम कभी स्कूल में नहीं आना पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि बच्चे मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी मां ऐसी है। जितने भी स्कूल में प्रोग्राम होते थे, कहीं भी प्रोग्राम होते थे, तो मां नहीं जाती थी। कभी बच्ची कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीतती थी, कोई बहुत बड़ा नाम करती थी, मां छुप करके बाहर खड़ी रहती थी, क्योंकि माएं तो माएं होती है, अब 100 गालियां दो तो भी अगले दिन वो आपकी सेवा करेंगी ही करेंगी, कितना आप उनको दुत्कारो वो तो करेंगी ही करेंगी। बेटी बड़ी हुई, शादी हुई उसकी, शादी में उसने कहा कि तुम मत आना, मेरे ससुराल वाले फिर नाराज होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, कहीं रिश्ता ना तोड़ दे इतने बदसूरत मां को देख करके, वो डरने लगेंगे। तो मां अलग रहती थी, उसके बच्चे हुए, पता चला बच्चों को देखने के लिए आई तो बच्चे डरने लगे उससे, शक्ल बड़ा भयावह था, जली हुई थी। बेटी ने डांटा, मैंने तुम्हें कितने बार कहा कि मत आओ, मेरे बच्चे डरते हैं तुमसे। मां नहीं आई। बहुत सालों के बाद समाचार आया कि तुम्हारी मां मरने वाली है, वो तुमसे मिलना चाहती है। बेटी नहीं गई, अपने व्यस्त जीवन में बिजी रही। जब समाचार आया कि मर गई है तो गए इसलिए नहीं जाते कि मर गई तो को संवेदना व्यक्त करना होता है। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं जाते, इसीलिए जाते हैं कि चलो मर गई और बाकी के सब कौन संभालेगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी का, उसका बैंक बैलेंस का, कोई ना कोई तो टेक केयर करना ही पड़ेगा ना। बड़े दया भाव से जाते हैं पैसे का ख्याल रखने के लिए, प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए। तो गए, बेटी गई, तो गई जब घर में ढूंढा तो उसके मां के बिस्तर के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी को उसने खोला, पढ़ा, उसमें लिखा था कि मैं बेटी मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हारे जीवन में कभी कोई खलल डाला हो तो, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी जब मैं तुमसे मिलने जाती थी, तुम्हारे बच्चों के साथ मिलने जाती थी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, मेरे शकल के कारण नफरत करते हो, पर एक चीज मैं तुमसे जिंदगी भर छुपा के रखा, वो मैं बताना चाहती थी, और वो ये है, ये मेरा बदसूरत जो आंख काणई हुई है वो तब हुई थी जब तुम छोटी सी थी, 7-8 महीने की थी, तुम्हारे ऊपर गर्म दूध गिर रहे थे, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने आप को आगे कर ली थी। और उसका परिणाम है कि मेरे मुंह जल गए थे, इसीलिए मैं काणी हो गई थी, बदसूरत हो गई थी। देखिए सज्जनों, संसार में हजारों लाखों माओं की ये भाव है जो शायद हम बड़े होकर नहीं समझ पाते हैं, और या समझते भी हैं अपने मजबूरी के कारण हम उसको एहसास नहीं करना चाहते हैं। हम तो कम से कम एक अलग दुनिया में रहते हैं। आपको लगता होगा कि मैं ऐसे गरीब गरीब औरतों के फोटो क्यों डालता हूं मां के रूप में, क्योंकि माओ की जो दशा है, जो काम है, हम एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं कि शायद हम इस धरती के एक बहुत बड़ा वर्ग, शायद 70% या 80% है जिसको हम कभी समझते नहीं है, जानते नहीं है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए है, घूमने के लिए है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे मां बाप के पास भी है। इसीलिए उस दूसरे समाज को, दूसरे जगत को भी देखना जरूरी है अगर आप इस संसार की सच्चाई को समझते हैं। वो एक संसार है जहां मां मजदूरी करने जाती है, हड्डी को तोड़ने वाले काम करने के लिए जाती है, पर पीछे मां को बांध करके 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करती है। किसी बाप को आप मजदूरी करते हुए नहीं देखेंगे जिसके कंधे पर, पीठ पर बच्चा बंधा हुआ हो, पर लाखों माएं आपको मिल जाएंगी खदान में मजदूरी करते हुए, खेती करते हुए, जिनके पेट में, पीठ में बच्चे बंधे होंगे, जिनके आसपास बच्चे खेल रहे होंगे। आप जिस सोसाइटी में जीते हो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसे फोटो डालते हैं। उस मां की असली भावना को समझने के लिए, अगर आपकी मां इस स्थिति में नहीं होती, फाइनेंशियली इतनी समृद्ध नहीं भी होती, तो भी वो भी ऐसी ही करती, ये समझाने के लिए कि किसी भी परिस्थिति में वो धनी है या गरीब है, पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, वो सब कुछ करती जो हमारे पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हमें मदद करती है। इसीलिए ये भी महाभारत का एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, मातृस्तु गौरवादन्नी पितृनन्नी तुमे निरे दुष्करं कुरुते माता विवर्धयति या प्रजः। कुछ लोग कंपेयर करते हैं कि बाप बड़ा है कि मां बड़ी है, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसीलिए महाभारत ने शास्त्रों में कहना पड़ा, फिजिकली तुम्हें किसी का भी मेहनत ज्यादा दिखे पर कोई अंदर से अगर तैयार है तुम्हारे लिए मरने के लिए, तुम्हारे लिए जीने के लिए, तुम्हारे लिए सारे दुख उठाने के लिए, मौका मिलने पर वो तुम्हारी मां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि बाप मेहनत करता है कमाता है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है। पर कोई कंपेयर नहीं हो सकता कि मां का यह योगदान है लाइफ में। इसीलिए कहा महाभारत में यक्ष जो पूछता है युधिष्ठिर से, इसे धरती से ज्यादा हेवी कौन है, भारी कौन है, धरती क्यों भारी है, तो फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि धरती को आप कितना भी एक्सप्लोइट करो वो रिएक्ट नहीं करती है। आप उसको खोदते हो, गड्ढा बनाते हो तो भी फसल देता है, देती है धरती। आप उसको काटते हो, उस काटने से उसके अंदर फसल पैदा होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है, उसका रिएक्शन आपके भलाई के लिए होती है। ये धरती की महानता है कि आप उसको खोदते हो तो उस पर आप घर बनाते हो, उसको खोदते हो तो उसमें आप अपनी फसल उगाते हो। इसीलिए मां को, धरती को हम मां बोलते हैं। वो सारे सह जाती है इसीलिए उसको भारी मानते हैं। पर मां धरती से ज्यादा भारी क्यों है? क्योंकि धरती जड़ है, इनर्ट है, उसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। सहना तो सिर्फ एक अलंकार है। और तुम्हारी मेरी मां वो जिंदा है, इंसान है, उसके अंदर दिल है, उसके अंदर भावनाएं हैं, वो तब भी सारी अच्छे बुरे कर्तृत्वों को सहती है, तब भी हमारे साथ खड़ी मिलती है। सारे दुनिया हमारे विरोध में हो जाए, खिलाफ में हो जाए, मां साथ में खड़ी मिलती है। मजबूरन वो आपसे अलग हो जाए तब भी वो आपके लिए तैयार मिलती है। दुनिया में अगर कोई निश्चल प्रेम का उदाहरण है वो मां में होती है। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में जब भी ईश्वर की उस दयालुता की, प्रेम की तुलना की गई है, तम ही ना पिता तम ही ना माता वसो, हे ईश्वर तुम हमारे मां जैसे हो, बाप जैसे हो। क्योंकि निश्चल प्रेम का, जिस प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है, अगर ईश्वर ऐसा है तो कहां हम एग्जाम्पल लाए? तो मां बाप को लाते हैं। इसलिए कहा धरती से भी ज्यादा हेवी है। जीवन में पहला गुरु वही है जो आपको ज्ञान देती है। इसीलिए जैसी मां होती है बच्चे फिर उसी तरह के संस्कार लेते हैं, आगे जाकर के मां बाप दोनों के संस्कार लेते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में बार बार कहते हैं मां को पढ़ी लिखी होना जरूरी है, जितना पुरुष को पढ़ना चाहिए उतना ही स्त्री को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब दोनों मां बाप पढ़े लिखे होते हैं तो संतान अच्छे होते हैं, जब मां बाप संस्कारी होते हैं तो बच्चे संस्कारी होते हैं। और ऐसा भी देखा गया, बाप हो न हो अगर मां ज्यादा संस्कारी हो तो बच्चों पर उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा मां के साथ समय गुजारते हैं घर में, जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि लड़का लड़की दोनों को पढ़ाओ, बराबर पढ़ाओ। मां के कितने भी बच्चे हो, प्यार बढ़ता नहीं है। कभी कभी दिखता है, मां बाप जो कमजोर लड़का या लड़की है, जो बहुत होशियार बच्चा है उससे ज्यादा कमजोर बच्चे को प्यार करते हुए दिखते हैं। जो किसी तरह के फिजिकली मेंटली कमजोर है उसके प्रति उनका अटैचमेंट ज्यादा दिखता है, तो बाकी बच्चे कंप्लेन करते हैं आप उससे ज्यादा प्यार करते हो। यह मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए होती है क्योंकि फिजिकली हमें देखते हैं कि मां उसके लिए ज्यादा टाइम निकालती है, उसको ज्यादा केयर करती है, पर आप उसके दिल में देखें किसी भी बच्चे के लिए कितना बिगड़ा हुआ हो या अच्छा हो, सबके प्रति एक भाव रहता है। फिजिकली अलग दिखता है इसीलिए उसी तरह जैसा भगवान ट्रीट करता है, जैसे सरकार में ट्रीट करता है कि जो कमजोर है उसके लिए एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। जो समर्थ है, जो कैपेबल है, वो अपने आप कर सकता है, जिसकी मेरेबिलिटी नहीं है मां ज्यादातर उसके प्रति ज्यादा ध्यान देती है कि उसको भी उसी लेवल पर लाना है। पर कभी कभी बच्चे उसमें मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं। ये देखिए, ये 90-95 साल की एक महिला है, बुजुर्ग महिला, उसका बेटा 55 साल का या 60 साल का बेटा है, बचपन से अपाहिज है और पूरे 60 साल से वो मां उसकी सेवा करता करती है। पास में और कोई नहीं, ना भाई ना बहन ना बाप, रिश्तेदार कोई नहीं, मां ही सेवा करती हुई मिलती है। हमने ऐसा देखा है हमारे रिश्तेदारों में भी। हमारी एक रिश्ते की बहन थी, 10-12 साल की उम्र में छत से गिर गई तो उसके स्पाइन की टूट गई, तो जिंदगी भर लेटी रही, कम से कम 20-22 साल लेटी रही, कुछ नहीं कर सकती थी, कोई नहीं था, ना उसके पापा ना भाई ना बहन, रिश्तेदार कोई नहीं, 24 घंटे उसकी मां, कोई उसकी मां ना कभी कोई रिश्तेदार के घर गई, ना किसी सेरेमनी में कहीं गई, ना कभी मंदिर में गई, क्योंकि जा नहीं सकती उसको छोड़ करके, पूरी जिंदगी उस अपाहिज बच्ची के लिए गुजारती। ऐसे लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे जीवन में, भारत से लेकर के अमेरिका तक, जब बच्चों की परवरिश के लिए माएं नौकरी छोड़ देती हैं, जबकि उनके कैरियर कितना भी उज्जवल हो छोड़ देती हैं। हमने कभी बाप को नौकरी छोड़ते हुए, बिजनेस छोड़ते हुए नहीं देखा, पर लाखों माओं को देखा है जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है, अपना काम छोड़ा है, अपने प्रोफेशन छोड़ा है, क्योंकि बच्चों को परवरिश करना है। अगर बच्चे ये भूल जाएं तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान ही करते हैं, पशु पक्षी में भी आप यही देखेंगे, नर पशु पैदा करके भाग जाता है, मादा पशु जो है वो पालती है बच्चों को। तो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, इंसान हो, सब जगह मां का कोई कल्पन, कोई कंपैरिजन के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए मनुस्मृति लिखते हैं, अस्मिन् जगति महत्यपि किमपि न तद्वस्तु विदसा विहितम् अनिमित्त वत्सलाया भवति यतो मातुरुपकारः। दिस वर्ल्ड इज वेरी वाइट, दैट नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्ट विच हैज बीन मेड बाय द क्रिएटर इवन बाय ह्यूमन बींग दैट कैन सर्व द मदर who is ever affectionate to her child without any cause. जो without any cause प्यार करना, उस ऋण को चुकाना आसान नहीं है। एक आदमी ने मदर्स डे के दिन घर फोन किया, इंडिया, मां को, बहुत सालों से नहीं जाता है, मां को पूछा हैप्पी मदर्स डे, मां ने कहा बेटे ये क्या होता है, तो बोले बेटे ये मदर्स डे होता है, वो क्या होता है, बोले मां का दिन होता है, बोले मां के दिन में क्या होता है, बोले मां को याद करते हैं, तो बताओ कोई बढ़िया सा जो भी तुझे चाहिए जितना महंगा से महंगा गिफ्ट बोलो मैं भेजता हूं। बोले अगर एक दिन के लिए आ सकते हो, बोले मां ये मत बोलो बहुत बिजी चल रहा हूं। हम पैसे से भी मां को खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ माएं बोलती नहीं है गिफ्ट लेकर खुश हो जाती हैं, कुछ माएं बोल देती हैं गिफ्ट रखो, आ जाते तो एक दो दिन थोड़ा दिमाग को ठंड पड़ जाता, दिल को देख लेता। आप किसी भी पैसा तो छोड़िए तुच्छ चीज है, अगर आप मां को पैसे से खरीदना चाहते हो गिफ्ट देकर, आस्तन्य पाना जननी पशूनाम आधार लाभाच नराधमानाम आगीह कर्मावधि मध्यमानाम आजीविता तीर्थमिवोत्तमानाम। जो पशु होते हैं ना, जानवर होते हैं, जब तक मां दूध पिलाए तब तक मां बच्चे के रिश्ता रहता है, जैसे ही उड़ने लगे चलने लगे अपना काम करने लगे मां बच्चों की रिश्ता खत्म। जानवरों में अगर कोई इंसान ऐसा है तो वो जानवर से बेहतर नहीं है। जो इंसानों में भी जो वर्स्ट टाइप ऑफ इंसान है, जो शादी करने के बाद मां को भूल जाते हैं, अपने अपने लाइफ में, अपने लाइफ मतलब मैं, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस ये है दुनिया। ऐसे सेल्फिश लोग इंसानों में सबसे निम्न स्तर के, बड़े घटिया स्तर के इंसानों में गिने जाते हैं। वैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें घटिया कहो इंसान कहो, उनकी लाइफ बड़ी खुशनुमा है। आगे है कर्मा वधि मध्यमाना, एक दूसरे कैटेगरी के हैं, वो तब तक मां अच्छी है जब तक वो काम धंधा कर लेती है ना, मेरे बच्चे संभाल लेती है, खाना बना लेती है। मां ऑफिस से आए क्या बनाए हो, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है, ये ड्रामा है। बीवी से बोलो खुद बनाओ, खुद बना के मां को खिलाओ। आजकल मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे क्या लाखों करोड़ों लोगों को, जब कोई किसी को देवता जैसे संबोधन करने लगता है, मां देवता है, नारी देवता है, भारत में हमारे किसी को भी पूछो गा लेंगे, क्या बोलेंगे, भाई हमारे यहां नारियों की बड़ा सम्मान है, देखो शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताएं रमण करते हैं। किस घर में नारी की पूजा होती है, ये पूजा बड़ा खतरनाक शब्द है। पूजा का मतलब है कि उसकी कोई बात नहीं सुनना, उसकी कोई काम नहीं करना, उसके लाइफ में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। हमने राम को पूजा करना शुरू कर दिया, कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी, क्यों, क्योंकि कोई बोलने की हिम्मत ना करे कि राम जैसा क्यों नहीं बन जाते हो, भाई वो पूजा के लायक है, उससे ज्यादा मत बोलो। मां तुम मेरे लिए देवता हो, अच्छा, मां बोली बेटे ऐसा नहीं ऐसा करो, तो चुप बैठ, तुझे क्या पता है, हम हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे हैं ना, तू क्यों बीच में टपकती हो, पूजा के लायक हो ना, पूजा पत्थर की करने की आदत पड़ चुकी है ना, इसीलिए तो मां बाप मरने पर हमारे यहां श्राद्ध करते हैं, जीते जी पूछते नहीं है, श्राद्ध मतलब पूजा करना। ये डर लगता है पूजा से, देवता शब्द से। मुझे याद है जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में, तो भारत में एक एनसीईआरटी है नेशनल, जो स्कूल लेवल के सिलेबस बनाते हैं, तो वो संस्कृत लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में सिलेबस बनाने के लिए मैं भी एक मेंबर था। तो हर क्लास की हर साल रिव्यू होता है, तो एक बार संस्कृत सिलेबस में एक गाना किसी ने रखा, सजेस्ट किया मां के बारे में, मम माता देवता, मेरी मां देवता है, वैसी वैसी। एक लेडी ने बड़ा अपोज किया, हो नहीं सकता, ये रख ही नहीं सकते, क्यों भाई? सब चिल्लाने लगे, भाई ये भारतीय संस्कृति है, हम अपनी मां को देवता समझते हैं, इसमें तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? यही तो बीमारी है, ये देवता बोल बोल के उससे काम कराने की आदत पड़ चुकी है। बस सम्मान ली, तुम सम्मान के योग्य हो। जैसे आप देखते हैं भारत में, नॉर्थ इंडिया में और बहुत सारे जगह बीमारी है, बेटी घर की इज्जत है, ये इज्जत के चक्कर में बेटी की सारी इंसानियत खा जाते हैं ये मां बाप। तुम घर की इज्जत हो, इसका मतलब पता है समझ में क्या आता है? कि घर से बाहर नहीं जा सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो, नौकरी नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी से लड़का चूज नहीं कर सकती हो, बस कुछ नहीं कर सकती हो, घर में बर्तन मांजो, खाना बनाओ, किसी गांव के लड़के से भाई समझ के भी बात नहीं करना, इज्जत हो। डर लगता है ऐसे शब्दों से? आपको लगता है? नहीं, मुझे तो बड़ा डर लगता है। बेटा क्यों नहीं इज्जत बन जाए? फ्रीडम चाहिए ना उसको, इसलिए कोई बोलता है बेटा घर का इज्जत है। बेटा जो मर्जी कर, तेरे से कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है देवियों सज्जनों, इसलिए हमारे यहां पंच महायज्ञ की जो कल्पना थी उसमें एक यज्ञ था पितृयज्ञ। और पितृयज्ञ का क्या अर्थ है? कि मां बाप के लिए आहुति मत डालो, मरने के बाद फोटो में माला लगा के ब्राह्मणों को खिला करके श्राद्ध मत करो, जीते जी उनकी सेवा करो, उनके साथ बातें करो जैसे अपने बच्चों के साथ करते हो, अपने मां बाप को देवता ना बना के अपने बच्चे बना दो तो वो जिंदगी भर खुशी से गुजार लेंगे। उनके ख्याल रखो, उनसे बातचीत करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको घर का मेंबर समझो, डिसीजन मेकिंग में उनके हिस्सा रखो, फिर देखना। वैसे तो कुछ भी मत करो तो भी आशीर्वाद होता है, करोगे तो तुम्हें भी संतुष्टि मिलेगी। और देवियों सज्जनों, और एक बात कह करके बात को समाप्त करते हैं, जो लोग अपने मां बाप की सेवा नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, वो अपने लिए भी गड्ढा खोदते हैं। जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, कोई हमारा भी ख्याल रखे, हमें भी थोड़ा सम्मान दे। तो बच्चे नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि वो आपके लेक्चर सुनकर बड़े नहीं हुए, उन्होंने आपको देखा है। हमारा जैसा व्यवहार अपने मां बाप के प्रति रहेगा, हमारे बच्चे हमारे से वैसे ही करेंगे, जैसा हमें वो करते हुए दिखेंगे वैसा करेंगे। देवियों सज्जनों, आप मदर्स डे के दिन सीखकर करें, सेलिब्रेट करें, या पूरे साल भर करें, मां बाप से बढ़कर निश्चल प्रेम करने वाला हमारे जीवन में कोई नहीं है। आप मुंह से उनको बोले ना बोले उनको फर्क नहीं पड़ता, पर दिल से कभी भी एहसान फरमोश मत बनिए। ईश्वर भी आपसे नाराज होगा अगर आप मां बाप को दुखी करके मंदिर में माथा फोड़ते हो। कोई ईश्वर इतना गधा नहीं है कि ऐसे ऐसे बेवकूफ इंसान को, पापी इंसान को पर आशीर्वाद करेगा जो अपने मां बाप को कष्ट देता है और मंदिर में माथा फोड़ता है। देवियों सज्जनों, आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी उन माओं को, वो आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी मां है, आपकी मातामही है, उन सबको हम नमन करते हैं जिन्होंने हमें, हमारे संतानों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को के लिए इतना कष्ट सहते हैं और सहते आ रहे हैं। हम दोबारा आज के इस शुभ दिवस पर उन सबको नमन करते हैं। ओम शांति शांति।